ओम शांति। ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ निर्मलता और पवित्रता का एक फरिश्ता आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सबके बीच में विराजमान है। हम एक हाथ हिलाते हुए रूहानियत की खुशबू छिड़कते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का लौकिक जन्म यज्ञ से एक वर्ष पूर्व 1935 में मुंबई महानगरी में हुआ। वहाँ पर आपने मेडिकल स्टडीज पूरी की 1962 में और आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला, मम्मा बाबा की पालना मिली और उसके बाद आप मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों की प्रैक्टिस आपने आरंभ की। सेवा केंद्र भी खोला जो कि आपको यज्ञ में आप पहली कन्या जिसको पिता ने सेवा केंद्र दहेज के रूप में दिया, पिता का धन सफल कराया बाबा की सेवा में और आज तक भी हम उनको देखते हैं सबका धन सफल करवा के वर्तमान और भविष्य सबका संवारते हैं। न सिर्फ इतना ही, फिर 71 में बाबा ने आपको विदेश सेवा अर्थ चुना तो 71 से 78 तक विदेश की धरनी पर अलग अलग देशों में जाकर आपने बाबा की सेवाओं की नींव डाली। यहाँ से पहले यूके गए, लंदन गए, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि आदि विभिन्न स्थानों पर सेवा के बीज बोते चले गए और 78 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और वहाँ से 78 से 2008 तक रहकर पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं का विस्तार किया। आज की डेट में करीब 18 देश हैं जो उस रीजन के अंतर्गत आते हैं जहाँ बाबा के बच्चे निकले हैं, सेवा केंद्र खुले हैं। तो आप एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल डायरेक्टर हैं और फिर 2009 से बाबा ने आपके कंधों पर ज्ञान सरोवर अकेडमी के डायरेक्टर पद भी आपके कंधे पर डाला वो संभालने के लिए। तो 2009 से दीदी यही हेडक्वार्टर में ज्ञान सरोवर में रहकर अपनी देश और विदेश दोनों को संभाल रहे हैं और दादियां जैसे अव्यक्त होती चली गई तो और एक जिम्मेवारी आपके कंधों पर आई, आप यज्ञ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। लेकिन जितनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके कंधों पर पड़ती जाती हैं, हम प्रैक्टिकली अपने आँखों से देखते हैं, अनुभव करते हैं, उतने ही इजी रहते हैं आप, उतने ही लाइट रहते हैं, उतने ही उपराम और न्यारे प्यारे, उतने ही मितभाषी रहते हैं, बहुत कम शब्दों में बड़े बड़े संदेश सिखा देते हैं। तो हम आज ऐसी महान हस्ती से सीखेंगे शूद्र सो ब्राह्मण सो फरिश्ता हम कैसे बने। आदरणीय दीदी जी
ओम शांति। लक्ष्य है परिवर्तन करना, बाबा के पास आए तो हम शूद्र थे, ब्राह्मण बने और फरिश्ता बनकर फिर देवता बनना है सतयुग में। तो शूद्रों की चाल क्या है, बोल चाल कर्म क्या है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कोई पुराने संस्कार हमारे अभी तक बदली नहीं हुए हैं तो वो हमें देखना है कि हमें पुराने संस्कारों को पूरा परिवर्तित करना है। शूद्र है उनका बोलना होता है रफ डफ, बड़े आवाज से, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। व्यर्थ बोलना होता है। परचिंतन, परदर्शन, जर्मय जन्मय, जोर से हंसना, चलन, फास्ट चलते हैं, देरी होती है तो दौड़ते हैं, चप्पल का शोर होता है। लंदन में हम थे तो हम देखते थे, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते रहते थे, देरी से उठेंगे, जल्दी जल्दी ब्रश करके कपड़े बदली करके हाथ में एप्पल लेकर दौड़ते थे, खाते भी जाते थे, दौड़ते भी जाते थे। चलन, फास्ट दौड़ना, खान पान जो भी आया स्वाद के वश, तो स्वाद के अर्थ खाते हैं, नियमित नहीं। अभी ऑफर मिली, किसी ने कुछ ऑफर किया तो खा लेते हैं, और इंडियन है चाहे माताएं बहनें भी है, अपने को वेस्टर्नाइज दिखाने के लिए पार्टी में जाएंगे, शराब पिएंगे, सिगरेट फूंकेंगे, ड्रग्स भी ट्राई करेंगे, ड्रेस में मर्यादा नहीं, फैशन वाले कपड़े, एक्टर्स एक्ट्रेस की कॉपी करेंगे, उनके जैसा बोल चाल एक्ट करेंगे। वास्तव में हमें लक्ष्मी नारायण की कॉपी करनी चाहिए, क्योंकि वो हीरो एक्टर थे हमारे ड्रामा में। सोते हैं देरी से, उठते भी देरी से हैं, और उठकर पहले क्या करेंगे, न्यूज़पेपर, सिगरेट, चाय, कईयों को तो बेड में ही चाय चाहिए। संबंध के मोह में फंसे रहते हैं, लोभ वश, चोरी ठगी झूठ, दृष्टि वृत्ति खराब, और चेहरा कभी खुश कभी उदास, मूड कभी ऑफ हो जाता है, मूड बदलता रहता है परिस्थिति अनुसार। गुस्सा आ जाता है, रूठ जाते हैं, चेहरा जल्दी बिगड़ जाता है, हाव भाव बदलते हैं, आंख मिचौली करते हैं, तो चेहरे पर तेज नहीं, आर्टिफिशियल मेकअप करते हैं, और इसमें समय और धन वेस्ट करते हैं। तो अभी हमें क्या अटेंशन रखना है, क्योंकि तपस्या करनी है, परिवर्तन करने के लिए तपस्या करनी है, और तपस्या के लिए त्याग चाहिए। तो पुराने संस्कारों का त्याग करना है, पुराने रीति का त्याग करना है और पुरानी दुनिया में वैराग्य आना चाहिए, क्योंकि वैराग्य होगा तो त्याग करना सहज, त्याग है तो तपस्या सहज, तपस्या है तो परिवर्तन। तो इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी रहो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो एक से ही सर्व संबंध हो और बाप से बहुत प्यार हो, तो न्यारा और प्यारा बनना है। अपने शरीर से, शारीरिक संबंध से और अपने वैभव से न्यारा, नष्टो मोह। बेहद का वैराग्य करना है, क्योंकि ज्ञान के पहले खाने पीने में इंटरेस्ट था, संडे संडे खाना नहीं पकाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, नए नए ड्रेस खरीदेंगे, पैसा आया जेब में खरीदारी करने चले गए। दिवाली आई तो गहने सोना खरीदेंगे, छुट्टियां आई तो घूमने जाएंगे, सैटरडे संडे डांस है, पार्टी है, स्विमिंग सर्फिंग, स्पेशली विदेशियों को स्विमिंग सर्फिंग का बहुत शौक होता है और समुंदर के पास सब शहर है तो क्या करेंगे, हमारे सेंटर में एक दो भाई रहते थे, उनको भी ऐसा शौक होता था, मुरली पूरी हुई सर्फिंग के लिए भागेंगे। हमें एकांत प्रिय बनना है, ऐसे नहीं जैसे फ्री हुआ तो क्या करते हैं लोग, टेलीविजन उठाया, टेलीफोन उठाया, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर बिजी हो जाते हैं। एकाग्र रहना है, एक नाम में, एक का ही नाम चेहरे पर हो, इकोनॉमी करनी है। बाबा ने हमें इकोनॉमी और उदारता का बैलेंस सिखाया, कम खर्च माला नसीब। कंप्लीट पवित्रता, अपवित्रता का अंश मात्र न हो और दृढ़ निश्चय होना चाहिए मुझे बदलना है, मुझे फरिश्ता बनना है। तो बाप के साथ रहना है, बाप के साथ सेवा करनी है, बाप के साथ चलना है और साथ चलने के लिए समान बनना है, बाप समान बनना है, तब तो साथ चल सकेंगे ना। तो अपना टेंशन होना चाहिए, अपने आप को चेकिंग करनी है, क्योंकि पुराने संस्कार इतने पक्के हो गए हैं, तो चेकिंग करते रहना है। योग तपस्या से शक्तिमान बनना है, रोज मुरली पढ़नी या सुननी है, और बाप का संग रखना है, तो औरों को ज्ञान का रंग लगाना है। तो पहले कर्म बदलना है, बाद में बोल, बाद में संकल्प, और बहाने नहीं। कई बार क्या करते हैं, गुस्सा आ जाता है ना, फिर बहाना बताते हैं, हाँ कहेंगे उसने ऐसे किया, दो बार ना कहा, नहीं करो नहीं करो नहीं करो, फिर भी करते हैं, गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो बहानेबाजी नहीं, और अलबेलापन भी ना हो। तो फरिश्ता की ड्रेस यहां से ले जाना, स्थूल गिफ्ट तो मिल गई होंगी, हाँ साथ साथ फरिश्ते की ड्रेस ले जाना जो चमकीली। तो अपनी अवस्था अशरीरी अव्यक्त रहे, नयनों में रूहानियत की आकर्षण हो, और हमारे नयन औरों को आत्मा का साक्षात्कार कराएं, तीन लोक का साक्षात्कार कराएं, चेहरे पर पवित्रता की झलक हो, बोल हमारा मीठा अमूल्य ज्ञान रत्नों से भरपूर, फरिश्ते शक्ति गुण वरदानों की वर्षा करेंगे। इतने अपने में भरे पड़े हो जो औरों को देते रहेंगे, उन्हों का पूजन होता है दाता वरदाता के रूप में। वो सर्व आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने वाले शक्तिमान है। सदैव खुशी में नाचते रहते हैं, एक रस स्थिति रहती है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, परंतु हमारी स्थिति एक रस रहे, एक से सर्व संबंध, कर्म करते धरती से परे, उसको हमेशा पंख दिखाया होता है। फरिश्ते यूजुअली बच्चे के रूप में दिखाते हैं, पंख होते हैं, उड़ते रहते हैं, संबंध में रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहो, पन्यारे और प्यारे, अपने को अवतरित आत्मा समझते हैं और कर्तव्य है धर्म स्थापना का, दैवी देवता सधर्म स्थापना करना, शक्ति अवतार, डबल लाइट, सदा श्रीमत, मनमत परमत नहीं, जीवन अमानत ईश्वर की है, तो मेरापन कुछ भी नहीं, तन मन धन सब बाबा का, तो खुद दृष्टि बनकर रहेंगे, अपने को गृहस्थी नहीं समझेंगे। सर्वत्यागी, पुराने स्वभाव संस्कार का अंश मात्र भी नहीं, व्यक्ति वस्तु वैभव का कोई आकर्षण नहीं, मास्टर सर्वशक्तिमान, कमजोरी की बात नहीं, कमजोर कहेंगे क्या करें, ये हो गया ऐसे हो गया, न चाहते हुए भी हो गया, तो उनके लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं, कोई प्रश्न नहीं क्या करूं कैसे करूं। तो योग अग्नि से अपनी कमजोरियां जलाकर खत्म कर दो, कल्याणकारी वृत्ति और हर एक को सहयोग देना है। मंग उल्लास के पंखों और अपनापन फील हो खुद को और फील कराए, दादी प्रकाश मणि आई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो अंत में एक भाई मेरे से आकर कहता है ये फील होता है जैसे ये हमारी है दादी, जैसे आज भी ब्रह्मा बाबा मम्मा है नहीं, परंतु हम फील करते हैं कि हमारे मम्मा बाबा। तो फरिश्तों में सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जाकर सीधा देवता बनना है, तो देवता बनने के लिए पीछे पुरुषार्थ का मार्जिन नहीं, तो यहाँ ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकार। तो प्रैक्टिस करनी है कि कर्म करते करते भी बाबा की याद में रहना है और शरीर से उपराम रहना है और अपनी दिनचर्या जैसे बाबा कहते हैं ना, अमृत वेला से रात तक बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई है, उस अनुसार चलना है, व्यर्थ संकल्प बोल कर्म ना हो, हरेक के लिए शुभ भावना हो, बेहद की दृष्टि वृत्ति सर्व रिश्ता एक बाप से, औरों से किसी से कोई रिश्ता नहीं। और चलन बाप समान। तो हमारे आदि और अनादि संस्कार इमर्ज रूप में हो और निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व के प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना हो। तो यहाँ से ही ये प्रैक्टिस करना अपने आप को फरिश्ता समझकर चलना, औरों को भी फरिश्ता समान देखना और व्यर्थ बिल्कुल ना हो। ओम शांति।
ओम शांति। तो दीदी का सुंदर मार्गदर्शन अवश्य ही आपके लिए काम का होगा। दीदी ने अपने अनुभव से सारी बातें बताई। एक होता है कि हमने पढ़ा है, सुना है और क्लास में आके रिपीट कर दिया, लेकिन दीदी ने अपने जीवन में जो उतारा है, अनुभव के साथ जो बताया है, वो अवश्य ही हमारे जीवन को सुंदर मार्गदर्शन देता है। न सिर्फ मार्गदर्शन देता है लेकिन हमें भी करने की प्रेरणा और शक्ति दोनों प्रदान करता है। तो एक हाथ हिलाकर दीदी के मार्गदर्शन के लिए दीदी का शुक्रिया, आभार। बाकी अभी आपको सभी को खुली मार्जिन है, आप चाहे जो दीदी से प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। है किसी के मन में कोई प्रश्न पूछने के लिए? वो ज्ञान से भी रिलेटेड हो सकता है, योग से भी रिलेटेड हो सकता है, धारणा से, सेवा से, या दीदी विदेश में गए, कैसे उनकी सेवाएं रही, उनके अनुभव बाबा के, जो भी आप पूछना चाहो, खुली मार्जिन है। किसी के मन में प्रश्न या हम पूछे? हाँ, खुला ऑफर है आप सभी को विदेश की सेवा। दीदी विदेश में आपको बाबा ने भेजा तो आप सेंटर आपका एस्टेब्लिश हो चुका था, आपको छोड़ने में थोड़ा सा कुछ लगा या फिर वहां जाकर सेट होने में कुछ लगा, वो अनुभव?
पहली बारी मैं जब लंदन में गई तो क्या है, 71 में गई थी, उस समय ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर कितना समय राज्य किया था, 70 तो उन्होंने बहुत नशा होता था और इंडियन को मगाने नहीं देते किराए पर भी, समझते थे ये खाना पकाए का उसकी स्पाइसेस की बदबू आएंगी। और इंडियन भी क्या करते थे, कहते थे हम 3 रहते हैं, 3 दिन में 3 रात को। तो पब्लिक हॉल भी नहीं मिलता था क्योंकि आर्य समाज ही हवन करते थे, या हमारा सत्संग माना भोजन जरूर हो और भोजन खाने के बाद नेचुरली है थोड़ा जमीन में तेल वगैरह हो जाता था, तो इसलिए हॉल भी नहीं मिलता था। और फिर समझते थे कि ये लोग भजन कीर्तन खा करके बहुत आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं, तो इसलिए हॉल भी नहीं मिलता था। मुश्किल हमको एक इंडियन भाई ने किराए पर मकान दिया। फिर दादी आई तो उसने सबको प्रेरणा देकर वो मकान खरीदा, बाजू वाला मकान खरीदा दिया। पर शुरू में क्योंकि मैं इंडियन, चित्र हमारे सब इंडियन थे कोर्स के, तो वो समझते ये तो इंडियन के लिए है, तो इसलिए शुरू में डिफिकल्ट हुआ। अभी तो इंग्लैंड में चर्च बेचते हैं, बाबा के मकान खरीदते हैं, चर्च को सेंटर बनाते हैं, पर उस समय तकलीफ थी। दादी ने योग पावर से सबको समर्पित भी कराया और कई विदेशी बहनें सेंटर भी चलाती है। जयंती बहन की मुख्य मददगार मॉरिन, वो भी इंग्लिश है, पर उसने भी अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसके पति ने भी समर्पित किया, और वो पति अलग रहता है, ये अलग रहती है। तो ऐसे दादी ने कईयों को प्रेरणा दी। ऑस्ट्रेलिया में जब शुरू किया तो ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि उन दिनों में करेबियन में एक योगा टीचर ने अपने 100 शिष्यों को मरवा दिया, ऐसी शिक्षा दी। आज भी ऐसा एक कोई है अफ्रीका में जो कहते हैं खाना पीना छोड़ दो, मर जाओ, स्वर्ग में जाएंगे। तो उन दिनों में उसने किया था, तो लोग डरते थे योग में आने के लिए। तो मैं और सुमन थे, तो हम लोग रिपोर्टर के पास जाते थे, एक ही बिल्डिंग में 2-4 रिपोर्टर थे। तो हम लोग कहे कि हम माउंट आबू से आए, हमारी इंटरव्यू लो। और एक अखबार ने हमारी इंटरव्यू लेकर हमारा फोन नंबर डाल दिया कि वहाँ योग सीखने से आपका शराब सिगरेट छूट जाएगा, आपकी नींद आएगी आदि आदि। तो इस कारण एक मास तक, एक हफ्ते तक को फोन सवेरे 7 बजे से रात को 10 बजे तक, और हमने एक मास का कोर्स बुक किया कि सवेरे 10 बजे आओ, दिन में 6 बजे आओ शाम को, या 7 बजे आओ। तो एक मास में 400 ने कोर्स किया। और मैंने सुमन को कहा, पता नहीं ये लोग आगे आवे या ना आवे, हमको तो उस पूरा ज्ञान देना है। तो एडवर्टाइज की थी 3 दिन का कोर्स, सोम मंगल बुध। फिर कहते थे आपको आगे करना है तो गुरु शुक्र शनि कहते थे, और छः दिन में हम उनको कहते थे पवित्र बनना है, सिगरेट शराब छोड़ना है, सतो प्रधान खाना खाना है। तो उसमें से 400 में से दो रहे जो मुरली सुनने लगे, पर धीरे धीरे पीछे कैन और चार्ली, इन्होंने लंदन में ज्ञान लिया था, वो वापस आए और नेचुरली है, लोकल लोग हैं, अपनी भाषा में अपनी कल्चर अनुसार ज्ञान देकर उन्होंने अच्छी स्थापना की और स्टूडेंट बनते गए। मॉरिशस में बहुत सहज रहा क्योंकि हमने पहले इंटरव्यू दी न्यूज़पेपर में, पॉपुलेशन उस समय 9 लाख था और कोई वहाँ ऐसे गुरु वगैरह नहीं था, तो सवेरे से लेकर रात तक क्यों लगती थी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं कुछ नहीं, तो हम दोनों बहनें न साथ में खा सकते थे न साथ में सो सकते थे, एक को बैठना ही पड़ता था। कभी भी बाहर से आ जाते थे, गांव गांव से लोग आते थे, तो समझो 2-3 मास में हमारे पास 50 स्टूडेंट हो गए। और पीछे मुझे निमंत्रण आया ऑस्ट्रेलिया का, तो मैं वहाँ से ऑस्ट्रेलिया गई। बाकी जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ज्ञान लिया, कोई सिंगापुर की बहन थी जाकर सिंगापुर शुरू किया, मलेशिया के दो भाई थे उन्होंने मलेशिया में शुरू किया, एक बहन जापान गई क्योंकि उसका बाप था जापान में सिखाता था इंग्लिश, तो वो बहन का जन्म जापान में हुआ था, उसने कहा मुझे जापान की सेवा करनी है, मैं जाऊँ। कोई इंडोनेशिया गया, न्यूजीलैंड मैं भी गई, न्यूजीलैंड फीजी, और वहाँ गीता पाठशाला शुरू हुई और पीछे भावना बहन जाकर न्यूजीलैंड फीजी का प्रचार किया। मतलब मेहनत तो लगी और थोड़ा शुरू में तो शौक भी लगा क्योंकि यहाँ हम कितनी मर्यादा से रहते हैं और वहाँ तो खुले आम, स्टेशन पर देखो तो भाई की गोद में कोई बहन बैठी है, ट्रेन में भी एक दो को किस करते हैं, एक दो को भाकी पहनते हैं। और अमेरिका में हम पहली बारी 71 में योगा कॉन्फ्रेंस में गए, तो योगा कॉन्फ्रेंस में बाथरूम ऐसे थे सिर्फ दो दीवार बाहर से खुला, और सभी कपड़े उतार कर चलते रहे, उनको तो बहुत देही अभिमानी होते थे, गुड मॉर्निंग करके नंगे नंगे बाथरूम में आ जाते थे, स्पेशली भाई लोग, और हमारा बहनों का अलग होता था। तो समझो थोड़ा शौक लगा और इंडिया में तो हमने सेंटर शुरू किया, तो मुंबई में गांधीवली में, तो शुरू से 25 स्टूडेंट हो गए थे जब तक सेंटर भी शुरू किया, क्योंकि मैं डिस्पेंसरी चलाते थे तो वहाँ की आसपास की माताएं कोर्स किया, और एक दो माता पहले से ज्ञान में थी, उन्होंने भी अपने घर में गीता पाठशाला शुरू कर दी थी, तो सीरीज से काफ़ी लोग हो गए थे। तो शॉपिंग वगैरह वो लोग करते थे, बाबा ने हमें एक बुजुर्ग माता दादी दी थी, वो खाना पकाते थी, और एक टीचर बहन भी थी जो कोर्स वगैरह कराती थी। तो इसी रीत से इंडिया में तो सब कुछ मिल जाता था तैयार, परंतु वहाँ तो सब कुछ हाथ से करना पड़े। लंदन में सफाई भी हाथ से करो, खाना भी पकाओ, शॉपिंग भी करो। और शुरू में तो माताएं आएंगे सोमवार और गुरुवार, चार माताएं, और शनि या रविवार सब आसपास के दूर के परिवार आते थे। शनिवार आएंगे तो रविवार नहीं आएंगे, रविवार आएंगे तो शनिवार नहीं आएंगे, तो इसलिए सूक्ष्म सेवा कम थी, स्थूल सेवा ज़्यादा थी। फिर तो धीरे धीरे अभी तो सेवाधारी वहाँ बहुत है, आसपास रहते हैं ग्लोबल हाउस के बाजू में, और सेवा में मदद करते हैं, पर उस समय तो सब कुछ हाथ से करना पड़ता है। दादी जान के भी शुरू शुरू में गई तो खाना पकाने में मदद करती थी। तो थोड़ा मुश्किल तो हुआ, पर बाबा की सेवा चलते रहे।
तो दीदी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया कि हालांकि एक डॉक्टर के रूप में दीदी गए, लेकिन डॉक्टर के रूप में रहते हुए भी सब कुछ अपने आप किया, वरना डॉक्टर माना क्या सोचता है, डॉक्टर बनेंगे सब हमारे अंडर में काम करने वाले होंगे, लेकिन तो वही दीदियों ने जो त्याग तपस्या किया है उसका फल आज हम खा रहे। हम देखते हैं दीदियों ने विदेश में सेवाओं का विस्तार किया, और भारत वाले कहते दीदी हमें विदेश जाना है, आप हमारा अरेंज करके दो। तो दीदियों ने खूब त्याग और तपस्या की, और हम क्या कर रहे हैं, मेवा खा रहे हैं। तो कितना ना हमें दीदियों को थैंक्स करना चाहिए। आप हाथ उठा रहे थे, कुछ पूछना था?
दीदी आपने विदेश में बहुत सारी सेवाएं की है, बहुत सारे सेंटर्स खोले हैं, लेकिन ये खोलने के समय आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए रहेंगे आपको खोलने में, वो क्या क्या है, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आपको आए रहेंगे, वो आप एक दो शेयर किया तो अच्छा रहेगा।
चैलेंज एक तो शेयर की कि लंदन में मकान नहीं मिला, हॉल नहीं मिला, और न्यूजीलैंड में मैं गई तो न्यूजीलैंड में क्या हुआ कि जिस घर में रहती थी, क्योंकि सेंटर तो था नहीं, घरों में रहना होता था, तो जिस घर में रहती थी वो मालिक भाई तो ज्ञान में आ गया, पर उसकी वाइफ ज्ञान में नहीं। वो आई पर फिर वो अपने अफ्रीका के थे, केन्या के, तो केन्या का चक्कर लगाया, कुछ इधर उधर की बात सुनी, आकर क्लास में आना बंद कर दिया। तो थोड़ा ऑड लगता है ना, घर वाले ही मुरली में नहीं बैठते। तो मैंने दादी को पत्र लिखा, क्योंकि फोन करने भी मैं बाहर जाने लगी, बाहर से पब्लिक फोन से बात करती थी मैं, और दादी को पत्र लिखा कि दादी यहाँ मैं अकेली हूँ। तो दादी ने जवाब में लिखा कि देखो हाथी है ना, वो झुंड में घूमता है, तुम शेर नहीं हो, अकेले घूमती हो। मतलब दादी एनकरेज करती रही। दूसरी चैलेंज ये थी कि जब मैं न्यूजीलैंड पहली बार जा रही थी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में तो हमने सेंटर एस्टैब्लिश कर दिया, और चार मास के बाद हम निकल गए, लोकल लोगों को कहा तुम संभालो अभी। तो नए नए ही थे चार्ली और कैन, पर उन्होंने संभाल लिया। और न्यूजीलैंड में मैंने पत्र लिखा सबको, सब संस्थाओं को, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। शिवानंद स्वामी की एक डिवाइन लाइट सोसाइटी ने जवाब दिया, पर वहाँ न्यूजीलैंड का वाइट पर्सन देख रहा था, उसने कहा भले तो आप आओ, आपको सिटी टर्मिनस पर लेने हम आएंगे, आप हमारे पास आओ, हम प्रोग्राम अरेंज करेंगे। तो मैं गई रात को 12 बजे पहुंची, बस लेकर शहर में गई, और सिटी टर्मिनस पर कोई नहीं। जो भी बस में आए थे या तो टैक्सी लेकर चले गए, या तो उनके रिलेटिव आए थे वो ले गए। और रात में तो वहाँ की ऑफिस भी बंद होती है, रास्ते में मैं अकेली थी। तो मैंने टैक्सी की, और टैक्सी वाले को मैंने एड्रेस दिया, और वो एड्रेस था इनकी ऑफिस का, और इनका आश्रम रहने का 8-10 किलोमीटर दूर था। तो हम गए वो एड्रेस पर, तो बड़ा दरवाजा बंद। वो टैक्सी ड्राइवर अच्छा था, कहा चलो हम टेलीफोन बूथ पर जाके टेलीफोन करें। अभी टेलीफोन बूथ में कॉइन डालना पड़ता है, और हमारे पास तो कॉइन था नहीं। उसने खुद ने, टैक्सी ड्राइवर ने डाला। तो आश्रम वाला कहता है कि पॉल आ रहा था पर उसकी कार बीच में बिगड़ गई, अभी आप यहाँ आ जाओ। उन्होंने एड्रेस दिया टैक्सी ड्राइवर को, यहाँ आ जाओ। तो टैक्सी ड्राइवर बेचारा ले गया, और वहाँ मैंने पैसा चुकता किया। और वो आश्रम को भी कुछ दिनों पहले आग लगी थी, तो सब कमरे तैयार नहीं थे, तो मुझे एक बहन के साथ रखा। अभी वो बहन है, उनको मरवाना की आदत थी गांजा, अभी वो मेरे सामने कैसे पिए, उसको अच्छा तो नहीं लगा मैं आई तो। पर दो चार दिन में फिर इंडियन एसोसिएशन में हमने उनके हॉल में भाषण किया, तो फिर इंडियन कहने लगे आप कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा मैं तो यहाँ रहती हूँ, तो कहा वो तो बहुत दूर है शहर से, आप हमारे पास रहो, तो हम रोज का शाम का कहाँ ना कहाँ प्रवचन रखेंगे। अब उस समय ऑकलैंड में सिर्फ दो घर थे जो वेजिटेरियन, बाकी सब इंडियन नॉन वेजिटेरियन। तो पहली रात तो मुझे उसके प्रेसिडेंट के पास रखा, वो नॉन वेजिटेरियन था। मैंने कहा खाना मैं अपने हाथ से पकाऊंगी और रहूंगी वेजिटेरियन के घर में। तो फिर दूसरे दिन हमको वेजिटेरियन घर में शिफ्ट किया, और आसपास घरों में प्रवचन रखा। तो औरों के पास रहकर अफ्रीका में भी मैंने तीन देशों में ट्रैवलिंग किया, केन्या, युगांडा और तंजानिया। वहाँ भी चार चार शहरों में चक्कर लगाया, तो वहाँ भी वहाँ अच्छा था क्योंकि संजो मैं नैरोबी से मोम्बासा गई तो उन्होंने प्रबंध कर दिया, यहाँ कोई छोड़ जाता वहाँ कोई लेने आता, और मैं खाना खुद पकाती थी तो वो लोग कहे आप दाल चावल खुद पकाते हो हमारे लिए भी पका दो, रोटी का आटा भी बना लो हम रोटी बना लेंगे अपने। मतलब उनको दुख तो होता था क्योंकि कोई भी साधु संत आदि आते थे तो ये तो हलवा पूरी और मिठाई बनाते थे और मैं तो दाल चावल रोटी सब्जी बनाती थी अपने हाथ से, पर हमारा नियम था तो चला लिया। तो अफ्रीका में सहज रहा, बाकी वेस्टर्न कंट्री में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ।
तो बहुत अच्छी दीदी ने शेयरिंग की विदेश के अपनी सेवाओं के अनुभव हम सबके साथ। पुनः पुनः दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, हमारे लिए खास समय निकाला। हम दीदी को हमेशा कहते हैं कि अब तो हमारे बीच में दादियां नहीं रह गई, पर जिन्होंने दादियों की पालना लेकर अपना जीवन बनाया ऐसी मूर्तियां तो हमारे पास में हैं। तो हम अनुभव करते हैं कि पूरी भट्टी में हमारे पास एक दादी है।
सब